राम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ महात्म्य एवं पहले अध्याय के 1 से 7 श्लोक पर्यंत। श्रीमद् भगवद गीता पाठ महात्म्य एवं पहले अध्याय के 1 से 7 श्लोक पर्यंत।
Thank you. पवेचंदो भयचारुवसी उमासुतं शोकलिना सकारकं नमामि विद्धे सर्वपापकारिणं
Yeah. Tasmat pranayam
सखेव सखु
भगवद गीता पाठ महात्म्य एवं पहले अध्याय के 1 से 7 श्लोक पर्यंत। श्रीमद् भगवद गीता पाठ महात्म्य एवं पहले अध्याय के 1 से 7 श्लोक पर्यंत।
वसुदेव सुतम देवम कंस चानो रमार्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु दुःशासनमिदं पुनः यशस्वितयत पुनः कृष्णो पदमवाप्नोति गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामकरस्य पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं जलस्नानं दिने दिने सकेद्भूताम्बरिस्नानं संसारमलनाशनं वीतासुवीतकोर्यमङ्गलीशास्त्रविस्तरैः या स्वयं तद्गुणा भवत्य गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते सर्वोपनिषदो गारो
2033 माघ शुक्ल छठ शुक्रवार 2 फरवरी 1969 समय लगभग 3 बजे उदराम सर के धोरे पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रारंभ हो रहा है।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तृतीयश्लोक। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामकः पाण्डवास्तैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्योढं दुर्योधनास्पदा आचार्यमुपसंगम्य जावत नमाब्रवीत पैशैकां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमतिं च मो द्योढां द्रुपदपुत्रेण तव शेष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट स द्रुपदस्त महारद धृष्टकेतोस्ते कृतानकाशिराजस्तवीर्यवान् पूजेत् कौन्तिभोजस्त शैव्यस्त नरभुङ्गव युधामान्योस्तवे क्रान्त उत्तमौजस्तवीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्त सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं तां ब्रवीमि ते अस्माकं तु विशिष्टये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यार्थं तां ब्रवीमि ते वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु
हरि शरणाय शरणं हरि शरणाय शरणं हरि शरणं
अपनी यासना होती है। भगवान इतने बड़े ऐसे ऐसे वृक्ष हैं वो महिमा जिन उसको स्तुति कहते हैं और अपनी कुछ मांग रख देना उसको प्रार्थना कहते हैं। ये स्तुति में प्रार्थना ये दोनों ही अभी होते हैं स्तुति और प्रार्थना हो गई। इसके बाद जो गीता का कुछ सार अपने समझ में आए वो बताई जाएगी वो अपना जीवन बनाने के लिए खास बात है। ये अभी का समय है, अभी का समय ये बड़ा शांति का है। हरेक भाई बहन अपने अपने घरों में इस स्तुति प्रार्थना को करें। रोजाना ये 5 बजे तो दुनिया भर में 5 बजे जो बात होती है वो सब एक हो जाता है। जैसे रेडियो में बोलता जब एक साथ सब सुनाई देता है, ऐसे बेतारे तार से ई होते सब दिन से एक हो जाते हैं। इस वास्ते अपनी दृष्टि ठीक 5 बजे शुरू करना। घड़ी में कुछ फर्क हो सकता है पर अपनी दृष्टि में कोई फर्क नहीं। 5 बजे से ठीक शुरू करें तो 5 बजे ही शुरू होती सब जगह अपने अपने घरों में भाई बहन सब इस तरह से करें तो ये एक बड़ा बल होता है। संघर्ष शक्ति ही कलव युगे। अभी इस युग में समुदाय में बड़ी भारी विचित्र ताकत है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एव थे आद्यंतवंत कौन थे न तेषु रन्ते बुध। संयोग जन्य जितने सुख है शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आदर आलस्य ये जो सुख है ये दुखों के कारण है। और अर्जुन ने पूछा कि पापों का कारण क्या है। अत के न प्रयुक्त पापम चलती पुरुष अनचन न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। क्योंकि पाप है उसका फल दुख होता है तो दुख कोई चाहता नहीं तो उसका कारण पाप है वो क्यों करता है चाहता नहीं क्यों करता है। तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध कामना है। कामना क्या सुख पीर संग्रह की सुख भोगने संग्रह करने ये चीज है भीतर। तो इस इच्छा से सुख भोग की इच्छा से पाप होते हैं और दुख युक्त होने दुख होता है। अगर इसका बहुत दुख होगा परिणाम में बड़ा भारी भयंकर दुख होगा परंतु अभी वर्तमान में सुख हो जाए इस सुख की लोलुपता से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। जितने विप्लव हो रहे जितने दुख हो रहे हैं जितने नरक हो रहे हैं जितने 84 लाख जोनी हो रही है जितना संताप हो रहा है चिंता हो रही है इनके मूल में देखो तो सुख भोग की इच्छा है। सुख और संग्रह करने की इच्छा तो अपनी है जो सुख भोग की इच्छा वो तो अपनी इच्छा से किया जाता है। इसका फल है वो बिना इच्छा के भोगा तो भोगना पड़ता है। जैसे जेल में जाने वाले चोरी करते हैं हत्या करते हैं नुकसान करते हैं डाका डालते हैं फिर वो चोरी में जाते हैं कैद में जाते हैं तो डाका डालना चोरी करना मार देना ये तो अपनी इच्छा से करते हैं और नरक बिना इच्छा को भोगना पड़ता है वो इच्छा से नहीं है। ऐसे ही सुख चाहते हैं आराम चाहते हैं उनको दुख भोगना पड़ेगा और वर्तमान में पाप करना पड़ेगा और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। ये आदरी जो प्रवृत्ति हो रही है केवल सुख को लेकर हो रही है सुख मिल जाए। ये जो ऑपरेशन हो रहा है नसबंदी हो रही है संतान न हो ये इच्छा हो रही है क्योंकि आराम से रहेंगे संतान के पालन करने में कष्ट होता है पढ़ाने में शिक्षा देने में कष्ट होता है इस वास्ते पैदा ही न हो। इसका नतीजा क्या होगा विचार में ऐसा आता है कि हमारे सुख में जो बाधा पड़े वो चीज न रहे तो बूढ़ा बूढ़ी सुहाएंगे नहीं दूसरा आदमी सुहाएगा नहीं ये सुख में हमारा हिस्सा नहीं लेगा, दुख देगा, सुख में बाधा देगा, वो नहीं चाहेगी। अभी जो संतान का निरोध कर रहे हैं, गर्भ तक गिरा रहे हैं कि इसे दुख होता है, कन्या की पान पोषण में ब्याह में खर्चा होता है, तकलीफ पड़ती है, अगाड़ी चल करके और शुभ की इच्छा से कुटुंब का भी नाश होगा, दूसरों का भी नाश करेंगे, जो हमारे काम में बाधक हो जाकर नाश होता है। डाका डालने वाले अपने लोभ में आकर हत्या कर देते हैं। वृंदावन में जमुना किनारे एक मुर्दा पड़ा था, उसकी छाती पर लिखा पुर्जा था कि मैंने इसको मार दिया, छाने के पैसे मिले, छाना मिला तो अपने लिए मार देगा दूसरे को। एक कविता याद आ गई, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत धरकत ही हो नेकन भावत शोर। कवि व्यभिचारी चोर क्या चाहते हैं? सुवर्ण को, तो कवि चाहते सुवर्ण मानो अच्छा अक्षर लिखा जाए, बढ़िया शब्द लिखा जाए, कविता सुंदर बन जाए। सुवर्ण को ढूंढत पर कवि और व्यभिचारी सुंदर स्त्री को चाहते हैं और चोर सोना चाहते हैं, तो सुवर्ण को ढूंढत व्रत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत धरकत यो, कवि भी चरण धरता है श्लोक का तो ठीक होगा, गरीब भाई चरण धर भी हो, व्यभिचारी भी चरण धरता धरता कोई देख न ले, चोर भी चरण धरता धरता गुरु और नेकन भावत शोर भी, शोर नहीं सुनाता। तो व्यभिचार करने के लिए जाता तो अच्छे से अच्छा आदमी विश्वाता नहीं, चोरी करने को जाता है तो अच्छे से अच्छा आदमी विश्वाता नहीं, क्योंकि बाधक हो गया वो। ऐसे जब सुख की इच्छा बढ़ेगी तो चोर है व्यभिचारी पर फैलेगा और फिर अच्छा आदमी सुहाएंगे नहीं। अभी तो इनकी हत्या करते हैं, इसके बाद अच्छी शिक्षा देने वालों की हत्या करेंगे। जैसे एक बालक है, वे सब मिलकर अगर सभा करे तो विचार ये होगा कि पहले स्कूलों को बंद करो कि ये हमारे कैद करने वाले हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं थी, मेरे को याद है पढ़ाई बढ़िया नहीं होती थी, खेल कूद अच्छा लगता था, हमें याद ही बात। तो गुरुजन कहते पढ़ो तो ये बात थी, उन्हें कह दिया तो पढ़ते थे, रुचि से नहीं पढ़ते थे। आज कड़े नहीं करते पढ़े, कैसे पढ़े, रुचि है नहीं, कड़े भी नहीं करते, तो मेरे उन लोगों ने पढ़ा दिया, जबरदस्ती हम पढ़ा नहीं चाहते थे, तो पढ़ाई करने वाले नहीं चाहते, इतनी तकलीफ थी, पर घर आराम से आएंगे तो फिर उस बैर करेंगे, विरोध करेंगे, ये पढ़ाने वाले तंग करने वाले, तो मूर्ख तो हम रहेंगे, बैर करेंगे उनके साथ। ऐसी शिक्षा अच्छी दे, संयम की शिक्षा दे तो बुरा लगेगा। आज न कहता हूं ये बात बुरी लगती लोगों को, हम ये समझते नहीं, हमारे बाधा पड़ती है, छोरा छोरी में पालन करने में कितनी होती है, इसका क्या नतीजा होगा इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो सुख की आराम की संग्रह की इच्छा से अनंत जितने संसार में सब के सब अनंत हो गए। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर पाप क्यों करता है, कि कामना है सुख की भोग की इच्छा से पाप करता है, तो पाप भी करता है दुख भी पाएगा ही, और पाप करने वालों को शांति नहीं होती है। ये निश्चित सिद्धांत है कि जो दुखी होता है दूसरे को दुखी करता है, अपने दुख नहीं होता वो दूसरे को दुख नहीं करता, अपने बेटे जलन होती है दूसरे को दुख करता है, दुखी आदमी ही पाप करता है, दुखी आदमी ही दुखी करता है। जो संत महात्मा मौज मस्त रहते हैं वो किसी को दुखी नहीं करते, वो जो देख रहे हैं सुख होता है लोगों को, तो दुख देने वाला स्वयं दुख पाता है तभी वो दुख देता है, पाप करता है फिर दुख पाता है दुख देता है। तो ये भोग की इच्छा है, सुख की इच्छा है, लोभ की इच्छा, ये बहुत अनर्थ करने वाली चीज है, बहुत अनर्थ होता है। हम दो और हमारे दो है, थोड़ा ध्यान दो तो हजार आदमी हजार ही रहेंगे ना, मरेंगे वो किस में से मरेंगे, उन हजार में से मरेंगे, तो मरते मरते सब खत्म हो जाएगा ना, हजारों अधिक संख्या तो पड़ेगी नहीं। हम दो और हमारे दो तो हजार से संख्या अधिक कैसे बढ़ेगी, दो एक और हमारे एक तो हजार के 500 तो पहले हो गए, तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अपना नाश नहीं चाहते, अनिच्छन नबी भगवान अनिच्छन नबी, अपना नाश नहीं चाहते, नतीजा यही होगा नाश होगा। अरे हिंदू कराते हैं, मुसलमान ईसाई नहीं कराते, तो हिंदुओं का नाश होगा, बस मुसलमान पढ़ेंगे। 3 करोड़ के 33 करोड़ हो गए सुना है, और हिंदू घट गए 40-50 करोड़ हिंदू घट गए 10-15। तो फिर फौज में पद में भर्ती कौन होंगे, जो ज्यादा संख्या हो ईसाई और मुसलमान भर्ती होगी, फिर कहीं दंगा हो तो रक्षा के लिए जाएंगे तो क्या दशा होगी, मुसलमान क्या करेंगे, हिंदू जल्दी मारता नहीं बिना मतलब, उनके धर्म दंड मिलेगा, आएगा जो मुसलमान नहीं माने, मुसलमान न बने उसको मार दो, मुसलमान बना लो, उनके स्त्रियों को धनबल उठ लो, ये उनके धर्म ग्रंथ में है, इसलिए हमने सुनी ये बात। अच्छा अच्छा आदमी, तो फिर क्या दशा होगी, अभी मानते नहीं करना, हमारे कहना मानते नहीं, संयम की बात करें तो वो सहाता नहीं, वो सहाता नहीं। अब पढ़ाई में तो कष्ट होता है, हमारे तो विरोध नेता नहीं थी, तो कृपा ही भगवान की रही कि पढ़ाने वालों पर विरोध नहीं हुआ। आज नकल करने वालों देख रहे, नकल करने मना करे तो मास्टर को मारेंगे, हमारे खेलने की इच्छा होती थी, हॉनेस्ट करने की इच्छा नहीं कभी हुई हो तो भगवान का नहीं हाथ नहीं है। पढ़ाने वालों का गुण मानते थे, ऐसी अवस्था में भी चाहते खेल, प्रत्यक्ष बात है, छोरा आपस में लड़े और कोई मारे तो रोता है शिकायत करता है, और मास्टर मार देता है तो आंसू तो आते हैं, शिकायत नहीं करता, उसकी असर है कि मेरे ठीक के लिए करते हैं, ये भाव है, नहीं तो बैर क्यों नहीं करे, छोरा मारे तो उसकी शिकायत करें, मेरे को मार ये मार दिया, मास्टर मारे तो आंसू आ जाएंगे, रोने लग जाएगा, ना तो घर में शिकायत करे, शिकायत करे मेरे को मारा। आजकल तो मारने लग जाते हैं, मास्टर डरते हैं विद्यार्थियों से, मारे तो ये आराम की इच्छा क्या अनर्थ करेगी, जिसको कोई ठिकाना नहीं है, पूरा अनर्थ सब तरह से, सब तरह से। तो आप सत्संग भजन ध्यान करते हो तो आराम के लोग भी मत बनो, धन के लोग भी मत बनो, त्याग के बनो, त्याग के लोग, त्याग हो, संयम हो, तितिक्षा हो, तितिक्षा कवच बताया है, तितिक्षा है, युद्ध में जाने वाले लोगों का कवच पहन लेते हैं तो चोट नहीं लगती, ऐसे साधकों के लिए तितिक्षा को कवच बताया शंकराचार्य ने, इससे रक्षा होती। हम तितिक्षा तो कवच ही है, हम सीधा कपड़े की सही क्या करोगे, कवच है तो वो तितिक्षा करना चाहिए। देखो धर्म के पालन करने में और भगवान के भजन करने में आरंभ में अगर सुख होता तो सब धर्मात्मा हो जाता, कुछ कष्ट सहना पड़ता है, पढ़ने में भी कष्ट पड़ना पड़ता है, न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी के हो के सीखे है, किसी होना पड़ता है। गुरु सुश्रूष है आविद्या पुष्कर नरेन हुआ अथवा विद्या विद्या स्वतंत्र नहीं हुआ साधन, तो कष्ट उठाना पड़ता है। संत महात्मा हुए, अच्छे अच्छे संत हुए हैं, गुरु की शिक्षा सही है। काठियावाड़ बाबा की एक धर्मशाला है, वृंदावन में स्थान है, उनकी बात सुनी है, वे गुरु जी के पास गए तो कर दिया चले गए, वे चले गए हिमालय में, तो वहां एक गुफा में रहते थे, और काठी बाबा को बाहर बैठा, बाहर बैठो भीतर नहीं आओ, इधर आओ जो लाठी मारते काष्ट क्षेत्र वो सब संत हो गए, अच्छे अच्छे संत हुए हैं, उनके जीवन को आप देखो तो पता लगेगा उन्होंने कष्ट सहा है, दुख सहा है, तब ऊंचे बड़े गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा तिरस्कृता यांत नरा महत्व गुरुजनों की वाणी से ताड़ना से जो तिरस्कार प्राप्त हुए हैं वे महत्व को प्राप्त होते हैं। अलब्ध शाणोत्कृष्णा जपा नाम नजात मौलो मणयो बसंती मणि खाण में निकलती है उसको शाण पर घसते हैं कुरुषाण पर सर सिंगारियां उठती है तब वो सब होती है राजा के मुकुट में चढ़ती है। तो कष्ट सहने से ऊंचा पद मिलता है और कष्ट सहने में ही पहले डरते हैं आराम ही आराम करते हैं तो क्या दशा हो। तो सत्संग करते हैं साधन कर रहे उन भाइयों से कहना है आप विपरीत अवस्था आ जाए तो कष्ट सहो उत्साह से इससे लाभ होगा। अपना मन है शरीर है इंद्रिया है मजबूत हो गई और आराम तरु से ये नष्ट हो जाती है। और जिनका भोगान भोगता वह में हो भोगता भोगन भोगन भोगे जगत कर हम भोगवेता हमारे हमारे को भोगों ने भोग लिया भोग तो फिर नए नए पैदा हो गए हम पुराने पुराने हो रहे दुनिया के जो जो हम मजे हरगिज कम न होंगे पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। तो भोगों को हम क्या भोगे भोगों ने हमारे को भोग लिया ये सुख आप भोगते हो सुख आपको भोग लेगा खत्म कर देगा शिवदेव सुख भोगते हैं मान भयंकर होगा क्या तदग्रे विषमेवा परिणाम ही अमृत हो बो तत्सुखम सात्विकम भोगतुम आत्मबुद्धि प्रसाद जम आरंभ में तो कष्ट सहना पड़ता है फिर सुख होता है और राजसी में विषेन्द्रिय संयोगदात यत्नग्रे अमृतोपम परिणाम है विषमेवा वो राजसी सुख होता है। तो अभी सुख भोगने फिर परवाह नहीं हमें चयन करने से मतलब किसकी चाची ताई है जिन कल जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है हमें चयन करने हमें तो मतलब सुख भोगना है इससे ये अनर्थ हो गए। धन के लिए कितना कष्ट उठा रहे डाका डालते पहले डाका डालते तो राज को पुकार जाते अब राज डाका डाले वो किन के पास जावे इन वाली आ गई सर किसको कहें कुछ कौन सो है ऐसी दशा है भाई आराम की हो लोभ की इच्छा ये सब अनर्थ करने वाली चीज तो संयम रखो साधार से निर्वाह करो भोग सुख के लिए नहीं आराम तर के लिए नहीं यही तन कर फल विषय न भाई इस शरीर का फल स्वर्ग विषय लोग नहीं है स्वर्ग के लिए स्वर्ग स्वर्ग यज्ञादि कर रहे अंत दुखदाई संयम पूर्व भगवान को याद करे संयम रखे निर्वाह करे थोड़े कपड़े में थोड़े अन्न जल थोड़ी मकान थोड़ा आराम जिसमें निर्वाह हो जाए निर्वाह दृष्टि से काम करो भोग दृष्टि से नहीं खाना पीना पहनना चलना फिरना सब सुख भोग की दृष्टि से न हो संयम रहे उसका फल बड़ा अच्छा होगा। तो मनुष्य को चाहिए जैसे लोभ में और आराम तलब न बने लोभ में न फंसे आराम तलब न बने तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा होगा। संयम में रहना बुरा लगता है वो तो फायदा है किसी की आज्ञा पालन करना है आज्ञा संबंध सुशायद सेवा परंतु उसमें कष्ट पड़ा पड़ता है दूसरों के मन की बात करनी पड़ती अपने मन की नहीं चलती और अपने मन की चलाते हैं वो उन्नत नहीं होती। आज तो ये हम स्वतंत्र आदमी है हम तो लकीर फकीर नहीं है क्या करेंगे जो मनमाई करेंगे तो ये पशुता है मनुष्यता नहीं है। गला को याद खड़ा कर लो यहाँ पेशाब कर देगा क्यों कर देगा मनमाएगी वो विधि थोड़ी है विधि करते मनवाएगी मनवाई क्यों करेंगे। तो ऐसी बात है दशा बड़ी दुर्दशा है भाई संयम पूर्व भजन स्मरण करो बड़ा संयम रखते हुए साधार से निर्वाह करते हुए जिस किसी तरह से भगवान की तरफ चलो इधर चढ़ना होगा तो भाई आराम तक भी आदि को छोड़ना पड़ेगा, फिर आराम महान आराम मिलेगा आपको, नहीं बस दुनिया का दुनिया को आराम मिलेगा, दुनिया की सेवा दुनिया को कितनी शांति मिलेगी अपना आराम छोड़ोगे तो। भजन स्मरण करके अच्छे हो गए तो उनके द्वारा कितनों को सुख मिलता है, कितनों को आराम मिलता है, सुख आराम नहीं है, कितनों का उद्धार होता है, कितनों का कल्याण होता है, कितने संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, कितने अच्छे गुण बन जाते हैं। अरे हम आराम तल बने तो क्या दशा होगी। तो भगवान ने भजन स्मरण में इस बात कहा है संतों ने कि राम भजन में देह गए साधना सेती प्रीत पड़े तो पाए, राम भजन में देह गड़े तो गंध कोई परवाह नहीं है, देह की कीमत नहीं है, भजन की कीमत है, भगवत भजन की कीमत है। उस भजन में कष्ट हो तो वो तप है, तो भजन स्मरण करते हुए धर्म पालन करते हुए जो कष्ट आता है ये जानकर तपस्या से ऊंची तपस्या है। पंचाग्नि तपे वैशाख के महीने चारों तरफ आग लगाकर बीच में बैठे ऊपर सूर्य की तपत पंचाग्नि तप कहलाता है, ये जानकर तप करे इसलिए बुखार आवे उसमें प्रसन्न हो जाए तो वो तप तो हमारा मन ग्रंथ है, ये भगवान का भेजा हुआ है। तो भेजे भगवान में हम अपना धर्म पालन करते हुए जो कष्ट आता है, जैसे हरिश्चंद्र राजा को आया, नल को आया, युधिष्ठिर को आया, तो ये बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज है। धर्म पालन करते हुए कष्ट है ये तो बड़े भाग्य को मिलता है, भाग्यवान को मिलता है। आराम तल्व को धर्म थोड़ा ही मिलेगा, भजन थोड़ा ही होगा, वो आराम तल्व नहीं कर लेगा। जन हरिया कायर कसू करे करावे ना कायर कर जो बापनो मन के धोखे फस गया। तो वास्तव में उन्नति सहनशीलता से होती, तो द्वंद सहिष्णुता, वेद सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, सहिष्णुता है वो बढ़िया थी, जितने सहनशीलता है उससे वास्तव में उन्नति होती है। तो मनुष्य को चाहिए भजन स्मरण करते हुए कष्ट तो सहना है। अब आप हम यहाँ संस्कृत करते हैं तो हम तो भाई अपने मकान से आकर बैठ जाते हैं, आप दूर से आते हो ठंडी में सत्संग करते हो, लाभ अधिक होगा। यहाँ पहले हम सत्संग करते थे लोग साइकिल पर आते थे, शीतकाल में साइकिल पर क्या दशा होती, चढ़ने वाली जाने वाली ऐसी हवा लगती है उसमें, तो ठंडी हवा चले कैसे सत्संग में आते, तो ये मूल चुकाते हैं वो लाभ ज्यादा होगा, लाभ का मूल चुकाया ना उसे, हमारे उनको तो मिला बैठे आगे जम जम के प्रमाणिया बैठे वहां बैठे, अब लोग कितने भाग्यशाली हो मुझे, इसलिए से तत्परता से लोगों भगवान के भजन में उसमें दुख हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वो दुख लाभदायक है, वो तपस्या नारायण नारायण जो वो शंका हो तो बोलो भाई नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय हो।
राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण एकादशी 8 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद बिना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम।